रश्मि आज बहुत खुश थी। आज बस प्रोमो शूट हुआ था, उसके बाद पार्टी हुई थी जो 5 बजे चली थी। उसके बाद सभी वहां से निकल गए। रश्मि भी अपनी स्कूटी से घर चली गई, पर रेहान ऑफिस चला गया था। उसने रश्मि को घर जाने के लिए कह दिया था। रश्मि घर पहुंची, आज उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जिन्हें उसने सिर्फ टीवी पर देखा था, आज वो उनसे मिलकर आ रही थी। वो फ्रेश हुई और बेड पर पड़ गई। उसके बाद उसने झट से आरवी को कॉल लगा दी। आरवी अभी बाहर गार्डन में बैठी थी और सुभाष जी के पैरों की मालिश कर रही थी। तभी उसका फोन बज उठा। उसने नाम देखा पर हाथों में तेल लगा था तो फोन नहीं उठा सकी। फोन बजते बजते कट गया। उसके बाद वो दोबारा बजा पर आरवी ने अब भी नहीं उठाया। अर्पिता जी उसे ही देख रही थी। उन्होंने जब देखा कि आरवी फोन नहीं उठा रही तो उन्होंने उससे सवाल कर लिया, बेटा आपका फोन बज रहा है, किसका फोन है और आप उठा क्यों नहीं रही? वो, बड़ी माँ, रश्मि का फोन है, अभी बात नहीं कर पाऊंगी, मैं बाद में बात कर लूंगी उससे, आरवी ने सहजता से जवाब दिया और वापस मालिश करने में लग गई। फोन एक बार फिर बज उठा तो अब अंशु ने फोन उठा लिया और मुस्कुराकर बोली, हेलो मासी। अंशु की मीठी मीठी आवाज रश्मि के कानों में पड़ी तो उसके लबों पर भी मुस्कान फैल गई। उसने बड़े प्यार से कहा, हेलो बेबी डॉल, कैसी है आप? अंशु तो बहुत हैप्पी है। पता है कल डैडी अंशु का एडमिशन करवाने जाएंगे, उसके बाद अंशु भी स्कूल जाएगी। मम्मा ने बताया स्कूल में ना बहुत मजा आता है। अंशु तो बहुत एक्साइटेड है स्कूल जाने के लिए, वहां अंशु फ्रेंड्स भी बनाएगी। अंशु की आंखों में अलग ही चमक थी और लबों पर गहरी मुस्कान छाई हुई थी। उसकी बात सुनकर सबके लबों पर मुस्कान ठहर गई। उसको इतना खुश देखकर सब खुश थे। रश्मि भी उसकी एक्साइटमेंट देखकर मुस्कुराकर बोली, ये तो बहुत बड़ी गुड न्यूज हुई, अब हमारी डॉल भी स्कूल जाएगी। पर वहां जाकर सिर्फ मस्ती मत करना, मस्ती के साथ साथ पढ़ाई करनी भी जरूरी है, तभी तो आप अपने डैडी जितने इंटेलिजेंट बनोगी। आपको अपने डैडी जितना स्मार्ट और इंटेलिजेंट बनना है ना? यस मासी, अंशु बिल्कुल डैडी जैसी इंटेलिजेंट बन जाएगी। अंशु ने मम्मा से प्रॉमिस किया है कि वो अच्छे से पढ़ाई करेगी और बिग होकर डैडी के जैसे बन जाएगी। अंशु ने लबों पर गहरी मुस्कान सजाते हुए जवाब दिया, और देती भी क्यों नहीं, शान उसके लिए उसका सुपर हीरो था और वो उसके जैसा ही बनना चाहती थी। सिर्फ शान ही नहीं, अंशु भी उससे बहुत प्यार करती थी। रश्मि अंशु से कुछ देर बात करती रही क्योंकि अंशु से उसकी भी काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। उसके बाद उसे याद आया कि उसने क्यों फोन किया था, और साथ ही ये भी याद आ गया कि आरवी ने उसका फोन नहीं उठाया था। तो उसने अंशु से बड़े प्यार से पूछा, अंशु बेटा आपकी मम्मा कहाँ है? मम्मा तो यहीं है अंशु के पास, मम्मा दादू की मालिश कर रही है, उनके हाथ डर्टी हैं, इसलिए मम्मा ने फोन नहीं पिक किया, तो अंशु ने पिक कर लिया, अंशु ने झट से जवाब दिया। अब उसने आरवी को देखा तो उसने उसको 5 मिनट बाद बात करने का इशारा कर दिया। तो अंशु ने आगे कहा, मासी मम्मा ने कहा है वो आपसे 5 मिनट बाद बात करेंगी। रश्मि ने ओके कह दिया, फिर दोनों ने फोन काट दिया। अंशु वापस पढ़ाई करने लगी। कुछ देर बाद आरवी ने अपने हाथ धोए और फोन लेकर अंदर चली गई। अब उसे डिनर बनाना था, पर उससे पहले ड्राई क्लीन होकर आए कपड़ों को उनकी जगहों पर वापस रखना था। अगर शान आ जाता और उसे उसकी चीजें छूते देखता तो उस पर गुस्सा करता, इसलिए वो कमरा भी तब ठीक करती थी जब शान चला जाता था, और कपड़े भी उसके आने से पहले तह करके उनकी जगहों पर रख देती थी, जिससे शान को ना पता चले कि उसके सारे काम वही करती है। उसने कपड़े रखते हुए ही रश्मि को फोन लगा दिया। रश्मि नीचे जाने की फिराक में थी, घर के काम में रजनी जी की मदद करनी थी उसे, पर उसका फोन बजा तो उसके कदम रुक गए। उसने आरवी का नाम देखा तो तुरंत ही फोन उठाकर गुस्से से बोली, अब हुए हैं तेरे 5 मिनट, मैं कब से तेरे फोन का इंतजार कर रही थी, एक तो खुद फोन नहीं करती और मैं करती हूँ तो उठाती नहीं है, शादी के बाद खुद ज्यादा ही बिजी रहने लगी है तू। ऐसा नहीं है यार, पिछले कुछ दिनों से थोड़ा ज्यादा काम होता है, अंशु ने बताया ना उसके एडमिशन के लिए जाना है तो टेस्ट के लिए प्रिपेयर करवा रही हूँ उसे, मिस्टर मल्होत्रा ने ये काम मुझे दिया है तो बस उसी में वक्त निकल जाता है, फिर घर पर छोटे मोटे काम भी होते हैं, डैड के साथ भी कुछ देर बैठ जाती हूँ, उनका भी मन लग जाता है, बड़ी माँ से बात करनी होती है वरना वो अकेली हो जाती हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता और अंशु तो छोड़ती ही नहीं है, अब बता कहाँ से निकालूँ टाइम, जब मौका मिलता है तो तुझे और माँ को फ़ोन कर लेती हूँ, बस पिछले कुछ दिनों से मौका नहीं मिल पा रहा था इसलिए फ़ोन नहीं किया, और अभी जब तूने फ़ोन किया था तो डैड की मालिश कर रही थी, फ्री होते ही तुझे फ़ोन कर दिया है। आरवी ने उसको सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर रश्मि ने चिढ़ते हुए कहा, हाँ हाँ मैं समझ गई कि तू अपने घर परिवार के बीच बहुत बिजी रहती है, अब अपना पुरान बनकर और ये बता, जीजू तो तुझसे बात भी नहीं करते, अंशु से दूर रहने को कहते हैं, फिर उसको पढ़ाने की जिम्मेदारी तुझे ही क्यों दी? आरवी ने 1 महीने पहले हुई उनकी लड़ाई को याद करते हुए कहा, उन्होंने सीधे मुझे नहीं कहा था, मैंने बताया था ना उस दिन उन्होंने मुझे कितना कुछ कह दिया था और हमारी बुरी वाली लड़ाई हो गई थी। रश्मि को उसने वो बात बताई थी तो उसे भी वो बात याद आ गई, तो उसने झट से कहा, हाँ तूने बताया था मुझे, उसके बाद मैंने उनसे बात करना छोड़ दिया था, उन्होंने मुझे इतना भला बुरा कहा, इतने घटिया इल्जाम लगाए मुझ पर कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सका, मैंने पहले ही कहा था कि मैं उनकी बेरुखी, नफरत, बदतमीजी सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर मेरे आत्मसम्मान पर अगर उन्होंने चोट की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं किसी भी रिश्ते के लिए अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकती। इसलिए उस दिन के बाद मैंने उनसे बात करना छोड़ दिया, तो उन्होंने भी मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की और मुझे ना कहकर छाया को कहा कि अंशु को तैयारी करवा दे टेस्ट के लिए। पर अंशु की पढ़ाई और बाकी सब काम मैं देख रही थी, तो मैं समझ गई कि वो मुझे ही कह रहे हैं, पर उनकी जो अकड़ है वो उन्हें झुकने नहीं दे रही कि मुझसे सीधे से कुछ कहें। इसलिए छाया का सहारा लेकर मुझे बता रहे थे कि मैं अंशु को तैयारी करवा दूं। उसकी बात सुनकर रश्मि ने अंशु की कही बात को याद करते हुए कहा, कल तू भी जाएगी जीजू और अंशु के साथ? पता नहीं, ऐसा कुछ उन्होंने अभी बताया नहीं है। शायद नहीं लेकर जाएंगे मुझे अपने साथ, उन्हें मेरा चेहरा देखना नहीं पसंद, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो मुझे अपने साथ कहीं लेकर जाएंगे। आरवी की बातों में एक उदासी और दर्द छुपा था, जिसे रश्मि ने भी महसूस कर लिया था। उसने एक बार फिर गंभीरता से सवाल किया, आरवी, तेरी शादी को एक महीने से ज्यादा हो गया है, क्या तेरे और जीजू के बीच कुछ भी ठीक नहीं हुआ है? वो आज भी तुझसे ढंग से बात नहीं करते, वैसे ही हर बात पर तेरी इंसल्ट करते हैं। पहले तो वो मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते थे, मैंने बताया तो था तुझे सब, फिर पिछले एक महीने से तो हमारी बात बिल्कुल ही बंद थी। उन्होंने मेरे साथ इतनी बदतमीजी की, पर मुझसे माफी नहीं मांगी तो मैं भी उनके सामने क्यों झुकती? मैंने भी उन्हें इग्नोर करना शुरू कर दिया, उन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ा। सारा दिन ऑफिस में रहते और आते तो अंशु के साथ रहते, उस वक्त मैं उनके सामने ही नहीं आती थी, डैड के पास रहती थी। कभी अंशु जिद करके ले जाती तब भी उन्हें नहीं देखती थी, बस अंशु से बात करती थी, वो भी पहल नहीं करते थे।
बंदा किसी को इतना गंदा कहे, उसकी इतनी इंसल्ट करे तो माफी ही मांग लेता है, पर नहीं, उस अकड़ू आदमी में इतना गरूर है कि उन्होंने मुझे सॉरी भी नहीं कहा और खुद भी मुझे नज़रअंदाज करते रहे, तो मैंने भी उनसे बात नहीं की। पर कल पता नहीं उन्हें क्या हुआ, खुद मुझसे बात कर रहे थे, मतलब ज्यादा नहीं पर जितनी भी बात की तमीज से बात की। पता है, कल उन्होंने मुझे कहा कि मैं अंशु की माँ की हैसियत से इस घर में रह सकती हूँ, पर उनकी पत्नी बनने की कोशिश ना करूँ। इतने दिनों से मैं यहाँ रह रही हूँ, पहली बार उन्होंने मुझे अंशु की माँ होने का दर्जा दिया है। मैं तो शॉक थी कि उन्होंने मुझे अंशु की माँ कहलाने का हक दे दिया, जबकि पहले वो मुझे हमेशा उससे दूर रहने के लिए कहते थे। उन्होंने मुझे ये भी कहा कि वो मुझे वो सम्मान देंगे जो कि माँ को मिलना चाहिए, मतलब अब वो मुझ पर वो घटिया इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे। पता है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं शुरू से उन्हें यही कह रही थी कि अपनी पत्नी नहीं मानते तो ना माने, बस मुझे अंशु की माँ होने का दर्जा दे दे, सिर्फ इतना हक दे दे मुझे। और अब फाइनली उन्होंने मुझे अंशु की माँ मान लिया है। कल वो मुझसे ठीक से बात कर रहे थे, मैं इतने में ही खुश हूँ। टू बी कंटिन्यूड।